नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, प्रेडिक्शन मशीन्स द सिंपल इकोनॉमिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थशास्त्रियों अजय अग्रवाल, जोशुआ गैंस और एवी गोल्डफार्ब की व्यवसाय और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित पुस्तक है। यह AI को मानव जैसी सामान्य बुद्धि या रहस्यमय जादू के रूप में देखने के बजाय भविष्य, वर्तमान या अतीत की अनुपस्थित जानकारी भरने वाली भविष्यवाणी क्षमता के रूप में समझाती है। लेखकों का मुख्य तर्क है कि मशीन लर्निंग का निर्णायक आर्थिक प्रभाव भविष्यवाणी की लागत को कम करना है। जब कोई बुनियादी इनपुट सस्ता होता है तो उसका उपयोग बढ़ता है, उससे जुड़े कामों का मूल्य बदलता है और संगठन नए ढंग से निर्णय लेने लगते हैं। पुस्तक इसी सरल आर्थिक सिद्धांत के माध्यम से एलेक्सा, खोज, स्वचालन, चिकित्सा और व्यावसायिक रणनीति जैसे क्षेत्रों को जोड़ती है। इसका उद्देश्य तकनीकी विवरण सिखाना नहीं, बल्कि प्रबंधकों, उद्यमियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को यह पहचानने में मदद करना है कि AI कहां उपयोगी है। कहा नहीं और मानव निर्णय की भूमिका क्यों बनी रहती है, मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, AI को सस्ती भविष्यवाणी के रूप में देखने का आर्थिक ढांचा। पुस्तक का सबसे विशिष्ट विचार यह है कि आधुनिक AI का आर्थिक सार भविष्यवाणी है। यहाँ भविष्यवाणी का अर्थ केवल भविष्य बताना नहीं है, उपलब्ध डेटा से वह जानकारी निकालना जो इस समय प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं है भी भविष्यवाणी है। किसी आवाज को शब्दों में बदलना, ग्राहक द्वारा अगली खरीद का अनुमान लगाना, धोखाधड़ी की संभावना पहचानना या किसी चित्र में वस्तु पहचानना, सभी इस व्यापक अर्थ में भविष्यवाणी के कार्य हैं। लेखक इस परिभाषा से AI की अनेक अलग दिखने वाली क्षमताओं को एक साझा ढांचे में रखते हैं। आर्थिक प्रश्न फिर यह बनता है कि तकनीक ने कौन सी वस्तु सस्ती की है। कंप्यूटरों ने गणना सस्ती की थी, जबकि मशीन लर्निंग भविष्यवाणी को सस्ता, तेज और कई परिस्थितियों में अधिक सटीक बनाती है। कीमत घटने पर उपयोग केवल पुराने कार्यों में नहीं बढ़ता, बल्कि नए उपयोग भी उभरते हैं। इसलिए किसी कंपनी को AI अपनाने से पहले यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या उसे AI चाहिए। उसे पूछना चाहिए कि उसके किस निर्णय में भविष्यवाणी महंगी, धीमी या कमजोर कड़ी है। यह दृष्टि प्रचार और भय दोनों से दूरी बनाकर निवेश के लिए अधिक ठोस प्रारंभिक बिंदु देती है। दूसरा, निर्णय में भविष्यवाणी, निर्णयात्मक विवेक और कार्रवाई का अलगाव। लेखक निर्णय को एकल गतिविधि नहीं मानते। एक उपयोगी निर्णय में कम से कम भविष्यवाणी, निर्णयात्मक विवेक और कार्रवाई शामिल होते हैं। भविष्यवाणी बताती है कि किसी विकल्प के बाद क्या होने की संभावना है। निर्णयात्मक विवेक यह तय करता है कि अलग अलग संभावित परिणामों में कौन सा परिणाम वांछनीय है और कितना जोखिम स्वीकार्य है। कार्रवाई उस चुने हुए विकल्प को लागू करती है। AI आमतौर पर पहले हिस्से यानी अनुमान लगाने में सक्षम होता है। वह अपने आप यह निर्धारित नहीं करता कि संस्था को लाभ, सुरक्षा, निष्पक्षता, गोपनीयता या ग्राहक संतोष में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। ये प्राथमिकताएं मानवों, संस्थाओं और नीतियों द्वारा तय होती हैं। इसीलिए सस्ती भविष्यवाणी मानव भूमिका को अनिवार्य रूप से समाप्त नहीं करती, उल्टे ऐसे लोगों का मूल्य बढ़ सकता है जो लक्ष्य निर्धारित करें, अपवादों को समझें, परिणामों की जिम्मेदारी लें और अनुमान को उचित कार्रवाई में बदलें। पुस्तक का ATM उदाहरण इसी बदलाव को स्पष्ट करता है। नियमित लेनदेन स्वचालित होने पर बैंक कर्मचारियों की भूमिका केवल खत्म नहीं हुई, बल्कि अधिक जटिल ग्राहक सेवा और सलाह की दिशा में बदली। यह ढांचा नौकरी के प्रश्न को केवल प्रतिस्थापन के रूप में नहीं, कार्यों के पुनर्गठन के रूप में देखने को कहता है। तीसरा, डेटा, प्रशिक्षण और फीडबैक से भविष्यवाणी की गुणवत्ता बनती है। सस्ती भविष्यवाणी अपने आप किसी संगठन को लाभ नहीं देती, उसकी गुणवत्ता प्रशिक्षण डेटा, सही लक्ष्य और निरंतर फीडबैक पर निर्भर करती है। मशीन लर्निंग पहले के उदाहरणों में इनपुट और परिणाम के संबंध खोजती है, फिर नए मामलों में परिणाम का अनुमान लगाती है। इसलिए कंपनी को यह समझना होता है कि वह वास्तव में किस परिणाम की भविष्यवाणी कराना चाहती है, उस परिणाम का विश्वसनीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं, और नई भविष्यवाणियों के सही या गलत होने का पता बाद में कैसे चलेगा। यह आवश्यकता डेटा को केवल तकनीकी संपत्ति नहीं रहने देती, बल्कि उसे संगठनात्मक प्रक्रिया का भाग बना देती है। यदि भर्ती, ऋण या ग्राहक सेवा का पुराना डेटा पक्षपाती निर्णयों का रिकॉर्ड है, तो मॉडल उन पैटर्नों को दोहरा सकता है। यदि सफलता का माप अस्पष्ट है तो अच्छी गणनात्मक सटीकता भी गलत व्यावसायिक लक्ष्य की सेवा कर सकती है। लेखकों का आर्थिक दृष्टिकोण यह दिखाता है कि डेटा संग्रह, लेबलिंग, निगरानी और प्रक्रिया सुधार भविष्यवाणी के पूरक निवेश हैं। कई बार सबसे उपयोगी AI परियोजना नया मॉडल बनाना नहीं बल्कि ऐसा कार्य प्रवाह बनाना है जिसमें सही डेटा दर्ज हो, परिणाम मापे जाए और मानव समय पर हस्तक्षेप कर सके। चौथा, सस्ती भविष्यवाणी से व्यापार मॉडल और कार्य प्रवाह का पुनर्निर्माण। पुस्तक AI को केवल किसी मौजूदा काम की गति बढ़ाने वाला उपकरण नहीं मानती। भविष्यवाणी पर्याप्त सस्ती और विश्वसनीय होने पर पूरी प्रक्रिया का क्रम बदल सकता है। इसका प्रसिद्ध वैचारिक उदाहरण खुदरा व्यापार है। पारंपरिक मॉडल में ग्राहक पहले वस्तु चुनता है और कंपनी बाद में उसे भेजती है। यदि ग्राहक की मांग का अनुमान बहुत अच्छा हो जाए तो कंपनी चयन से पहले ही वस्तु को निकट भेजने जैसे विकल्पों पर विचार कर सकती है। इसे लेखक शॉप देन शिप से शिप देन शॉप की संभावित दिशा के रूप में रखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हर कंपनी ऐसा करेगी बल्कि यह कि बेहतर अनुमान नई रणनीतियों को संभव बना सकता है। फिर भी हर अनुमानित लाभ के साथ लागत और जोखिम जुड़े रहते हैं। गलत अनुमान से अनावश्यक भंडार, ग्राहक असुविधा या प्रतिष्ठा हानि हो सकती है। इसलिए निर्णय केवल मॉडल की सटीकता पर आधारित नहीं होना चाहिए। संगठन को यह देखना चाहिए कि गलत सकारात्मक और गलत नकारात्मक अनुमान की कीमत क्या है, किस चरण में मानव समीक्षा चाहिए और क्या मौजूदा नियम या प्रोत्साहन नई प्रक्रिया के अनुकूल हैं। AI की वास्तविक आर्थिक शक्ति अक्सर पुराने कार्य प्रवाह में छोटी बचत के बजाय पूरे निर्णय तंत्र को नए ढंग से डिजाइन करने में प्रकट होती है। अंत में प्रतिस्पर्धा, गोपनीयता और नीति में भविष्यवाणी की नई कीमत। लेखक AI के प्रभाव को कंपनी की सीमा तक सीमित नहीं रखते। सस्ती भविष्यवाणी बाजार की प्रतिस्पर्धा, श्रम के मूल्य और सार्वजनिक नीति के प्रश्नों को भी बदलती है। जिन संस्थाओं के पास उपयोगी डेटा, उसे संसाधित करने की क्षमता और निर्णयों में उसे जोड़ने की व्यवस्था है, वे बेहतर अनुमान से लाभ ले सकती हैं। लेकिन डेटा का अधिक संग्रह गोपनीयता और नियंत्रण के प्रश्न भी उठाता है। उपभोक्ता सुविधा के बदले कितनी व्यक्तिगत जानकारी देना चाहते हैं और संस्थाएं उस जानकारी से क्या अनुमान निकाल सकती हैं, ये केवल तकनीकी प्रश्न नहीं है। इसी तरह बेहतर जोखिम अनुमान बीमा, ऋण, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अधिक सूक्ष्म वर्गीकरण ला सकता है, पर इससे निष्पक्षता और पहुंच पर दबाव पड़ सकता है। पुस्तक का योगदान किसी एक नियामक समाधान की घोषणा में नहीं बल्कि बदलते आर्थिक समझौतों को स्पष्ट करने में है। जब अनुमान सस्ता होता है तो डेटा, विवेक, जवाबदेही और कार्रवाई की कीमत तथा शक्ति संबंध बदलते हैं। नीति निर्माताओं को इसलिए केवल स्वचालन की संख्या नहीं देखनी चाहिए, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि निर्णय किस डेटा पर बन रहे हैं, त्रुटि का भार किस पर पड़ता है, अपील या सुधार की व्यवस्था क्या है और मानव उत्तरदायित्व कहां बना रहना चाहिए। निष्कर्ष में प्रेडिक्शन मशीन्स उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो AI के बारे में व्यावहारिक और गैर तकनीकी समझ चाहते हैं। मुख्य पाठक व्यवसाय प्रमुख, उत्पाद प्रबंधक, उद्यमी, निवेशक, सार्वजनिक नीति से जुड़े लोग और ऐसे पेशेवर हैं जिन्हें अपने कार्य में AI के अवसरों का मूल्यांकन करना है। पुस्तक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना प्रोग्रामिंग या गणितीय तकनीकें विस्तार से नहीं सिखाती, इसलिए गहरे तकनीकी प्रशिक्षण की तलाश रखने वाले पाठकों को इसे पूरक पुस्तक के रूप में देखना चाहिए। लेकिन इसी सीमा में इसकी शक्ति है। यह AI चर्चा को एल्गोरिदम की जटिलता से हटाकर एक साफ आर्थिक प्रश्न पर केंद्रित करती है। भविष्यवाणी की लागत घटने से किस निर्णय, किस पूरक कार्य और किस व्यापार प्रक्रिया का मूल्य बदलेगा। पाठक इससे AI परियोजनाओं को पहचानने के लिए एक अनुशासित भाषा पाते हैं। वे भविष्यवाणी, मानवीय विवेक, डेटा और कार्रवाई को अलग अलग देखकर गलत अपेक्षाओं से बच सकते हैं। समान विषय की कई पुस्तकें या तो तकनीकी कार्यविधि पर केंद्रित होती हैं या व्यापक सामाजिक आशंकाओं और भविष्यवाणियों पर। यह पुस्तक उन दोनों के बीच व्यवसाय रणनीति के लिए उपयोगी स्थान बनाती है। इसका सरल केंद्रीय विचार हर समस्या का उत्तर नहीं देता, विशेषकर नैतिकता, शक्ति और संगठनात्मक बदलाव की जटिलताओं का नहीं। फिर भी AI को निर्णय अर्थशास्त्र के रूप में समझाने की इसकी स्पष्टता इसे अपने वर्ग में अलग और लंबे समय तक प्रासंगिक बनाती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं अजय अग्रवाल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं।